Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmananda Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
प्रणोति तस्मै तं हरेवमात्मबुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन परम गुरुदेव एवं सद्गुरु देव के पावन चरणारविंदों में कोटिशः प्रणाम। परम प्रेमास्पद सत्संग प्रेमी श्रद्धा भक्तिमय माताओं सज्जनों, प्रतिदिन के प्रवचन में आप अलग अलग विषयों पर सत्संग श्रवण करते हैं। गत कुछ वर्षों से ईशादि उपनिषदों पर प्रवचन नवंबर में जो एक पक्ष के लिए मैं आता रहा तो होता रहा, इस वर्ष से जनवरी में यह कार्यक्रम बना। ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद तथा कठोपनिषद का प्रवचन सत्र में दो वर्ष पहले ही विचार संपन्न हुआ है। गत वर्ष प्रश्न उपनिषद का प्रवचन सत्र में विचार प्रारंभ हुआ था। प्रथम प्रश्न का विचार हो भी गया था, द्वितीय प्रश्न के कुछ मंत्रों की चर्चा कर चुके थे हम लोग। भूमिका के तौर पर उपनिषद शब्द का ऐसे वाचार्थ हुआ करता है जो आपके संसार के हेतुभूत अविद्या काम कर्म को समाप्त कर दें, उसे कहा जाता है उपनिषद। संस्कृत में जो शब्द बनते हैं व्याकरण के अनुसार कुछ धातुओं से बनते हैं, और उपनिषद शब्द में उपनी उपसर्ग पूर्वक सद धातु है जिसका विशरण गति और अवसाद ये तीन अर्थ होते हैं। विशरण शब्द का अर्थ है विनाश, गति का अर्थ है गति यानी गमन प्राप्ति और ज्ञान, तीनों अर्थ निकलते हैं उसके। और अवसादन कहते हैं शिथिलता को। तो ये तीन अर्थ उपनिषद में जो सद धातु है उसके होते हैं। धातु से जो प्रत्यय हुआ करता है उसका भी कुछ अर्थ निकलता है। तो क्विप प्रत्यय होकर के जो सद उपनिषद शब्द बना है तो इसका अर्थ होता है उप का अर्थ है समीप में, नी का अर्थ है निश्चय पूर्वक और सद का अर्थ निकलेगा विनाश करने वाला। समीप में रह करके जो आपके जन्म मरण रूप संसार का कारण है अविद्या काम और कर्म, इसे नष्ट कर दें, इसका विशरण कर दें, विनाश कर दें, उसे उपनिषद कहा जाएगा। तो जिसको नष्ट करना है उसके पास में ही प्रकट होकर के जो इन तीनों को नष्ट करें, तो पहले ये निश्चित हो करना होगा कि ये तीनों रहते कहां हैं। जन्म मरण के हेतु अविद्या काम और कर्म ये रहते कहां पर हैं, इनका रेसिडेंस कहां है, हाँ अंतकरण। तो अंतकरण में रहते हैं, मन बुद्धि में रहते हैं, अज्ञान भी बुद्धि में रहता है। और अज्ञान का कार्य जो विपरीत ज्ञान है वो भी कहां रहेगा, बुद्धि में, बुद्धि विपरीत हो जाती है। है आत्मा वेदांत शास्त्र के अनुसार सच्चिदानंद रूप, अभी ब्रह्मास्मि चिंतन माला के जिन मंत्रों का पाठ कर रहे थे ऐसे तो हरेक मंत्र के श्लोक के अंत में चतुर्थ पाद ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि ऐसा ही आता है ना, का अर्थ है कि अहम यानी आत्मा मैं वस्तुतः कौन हूं, ब्रह्म। ऐसा प्रेमपुरी जी महाराज ने जीवन भर समझाया उस समय के जिज्ञासुओं को, और आने वाले जिज्ञासु भी अपने उस वास्तविक स्वरूप को समझे इसके लिए ये चिंतन माला बना करके रखी है कि हम वस्तुतः ब्रह्म है। लेकिन उस ब्रह्म का इस समय बोध हमें नहीं है मैं के रूप में, मैं को तो जानते हैं, अहम को तो हम जानते हैं, अहम अर्थ को। ऐसा कोई नहीं संसार में प्राणी जो अपने आप को न जाने, अहम अर्थ का ज्ञान सबको है। लेकिन हाँ, सबको एक जैसा ज्ञान नहीं है ना। मनुष्यों को अहम अर्थ का ज्ञान है, मैं मनुष्य हूं इस रूप में, और देवताओं को ज्ञान है मैं देवता हूं, ब्रह्मा जी को मैं ब्रह्मा हूं, और पशुओं को मैं पशु हूं। तो ये सब जो है 84 लाख प्रकार के शरीर, इन शरीरों की यात्रा आपकी हमारी अभी तक कई बार हो चुकी है। अनादि संसार में असंख्य काल से कितने जन्म अभी तक हुए और कितने होने वाले हैं, कहा जा सकता है, बता सकते हैं कि इतने ही जन्म हुए हैं, इतने अरब नहीं बताया जा सकता। इसलिए नहीं बताया जा सकता कि संसार अनादि है और स्वरूप का अज्ञान भी अनादि है, और उस अनादि अज्ञान से हमने अनादि काल से इस संसार में असंख्य जन्म लिए हैं, और जो भी शरीर मिला उस शरीर को ही मैं मान लिया, और वो शरीर को मैं मानना इसे भी अविद्या कहा जाता है, लेकिन ये विपरीत विद्या है, विपरीत ज्ञान है, इसे अध्यास भी कहते हैं, भ्रांति भी कहते हैं, अविद्या भी कहते हैं। तो अविद्या दो प्रकार की, एक मूल अविद्या और एक कार्य अविद्या। मूल अविद्या है अज्ञान, मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, मैं ब्रह्म हूं ऐसा नहीं जानता हूं अपने आप को, ये अपने स्वरूप विषयक अज्ञान, ये है कारण अविद्या। और मैं मनुष्य हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं इत्यादि रूप से अपने आप को जानना, इसे कहा जाता है अविद्या ही, लेकिन ये है विपरीत विद्या। अविद्या में अ के अ का विपरीत ये अर्थ भी निकलता है, तो विपरीत विद्या का मतलब उल्टा ज्ञान, जो अकर्ता है उसे कर्ता समझना, अभोक्ता है उसे भोक्ता समझना, जो जन्मादि षड् विकारों से रहित है उसे जन्मादि षड् विकार रूप समझना, ये भ्रांति। आत्मा को कठोपनिषद भी और गीता भी और सभी उपनिषदें बताती हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, जन्मादि षड्भाव विकारों से रहित आत्म तत्व है, और उस जन्मादि षड्भाव विकारों से रहित आत्म तत्व को न जान करके हम अपने आप को जन्मादि युक्त समझ रहे हैं, ये है विपरीत ज्ञान, ये भी अविद्या है। और ये भी कहां है, मैं मनुष्य हूं ये निश्चय, मैं करता हूं भोगता हूं बुद्धि में, इसलिए अविद्या भी रहती है बुद्धि में। और फिर जब शरीर आदि को ही मैं समझेंगे, अपने आप को भोक्ता समझेंगे, तो जो इस लोक के अप्राप्त भोग हैं और अनुकूल समझते हैं, परलोक के अप्राप्त भोग हैं अनुकूल समझते हैं, उनको प्राप्त करने की इच्छा होगी, उसको कहा जाता है काम। और वो जो काम है, इच्छा है, भोग्य अहित पारलौकिक भोग्य पदार्थों को प्राप्त करने की, वह इच्छा फिर आपको कहीं गुफा में भी रहोगे एकांत में जाकर के, कि मुंबई में बहुत आबादी रहती है तो कहीं हिमालय की एकांत गुफा में जाकर के रहें, लेकिन ये कामना यदि हृदय में रहेगी आहिक पारलौकिक भोगों की, तो वहां पर भी आपको मन को ध्यान के माध्यम से एकाग्र करने में बाधक बनेगी वो कामना इच्छा, मन को एकाग्र नहीं होने देगी, समाधि नहीं लगने देगी। वह इच्छा, जिन पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा है, उन पदार्थों की प्राप्ति के साधन में प्रवृत्ति उत्पन्न करेगी, क्योंकि रजोगुण तो चलनात्मक है ना, और रजोगुण से ही उत्पन्न होता है काम भी, तो रजोगुण से उत्पन्न हुआ जो काम है वह रजोगुण के चलन यानी कर्म रूपी जो परिणाम है कार्य है उसमें प्रवृत्त करता है, जिसे इप्सित पदार्थ की प्राप्ति हो सके ऐसे साधन में प्रवृत्त करेगा। तो प्रवृत्ति से आपके प्रयत्न से जो पदार्थ को प्राप्त करने के लिए कर्म हो रहे हैं उन कर्मों को कहा जाता है कर्म। वो कर्म फिर दो प्रकार के, शास्त्रीय अशास्त्रीय। कामना से प्रेरित होकर के किए गए जो शास्त्रीय प्रवृत्ति और अशास्त्रीय प्रवृत्ति रूप क्रियाएं हैं, व्यापार हैं, वे हैं कर्म। और वो इस अनादि संसार में अभी तक असंख्य जन्म हुए और सारे जन्मों से यही करते आ रहे हैं, यही कर्म होते आ रहे हैं। और उन सब कर्मों का फल भोगा अभी तक नहीं है वे कर्म। और इस जन्म में भी तो शांत थोड़ी बैठते हैं, इस जन्म में भी कुछ न कुछ करते रहते हैं, शरीर से, इंद्रिय से, मन से, वे भी क्रियमान कर्म है। तो वे संचित कर्म जिनका पहले हमने अनुष्ठान किया है लेकिन फलोपभोग नहीं हो चुका, ऐसे भी बहुत से हैं, अभी भी जो हो रहे हैं वे, और जिनका फलोपभोग कर रहे हैं वे प्रारब्ध कर्म, वे तो इसी जन्म में फल दे करके समाप्त होंगे। लेकिन संचित और क्रियमान कर्म इनके लिए तो कहा गया अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। करोड़ों कल्प बीत जाते हैं लेकिन हमने करोड़ों कल्प पहले किया हुआ जो कर्म है वह हमारी बुद्धि में संस्कार रूप से अपूर्व बन करके स्थित रहता है, बना रहता है। कब तक बना रहेगा? कहते तब तक बना रहेगा जब तक उसका फलोपभोग नहीं होता, भोग से समाप्त होते हैं अज्ञानी के किए हुए कर्म। तो ये जो हमारे जन्म मरण का हेतु भूत अविद्या है, कर्म है और काम है, ये रहते कहां हैं? बुद्धि में, बुद्धि में ही रह रहे हैं। और उन्हीं के पास में उत्पन्न होकर के उनको जो समाप्त कर दें, निश्चित रूप से समाप्त करें, उसे कहा जाता है उपनिषद। तो ये बुद्धि में रहते हैं तो बुद्धि में ही उत्पन्न होकर के जो बुद्धिस्थ अविद्या काम कर्म को समाप्त कर दें माना जाएगा उसे उपनिषद। शब्द का अर्थ वो उपनिषद है। तो समीप में माना जाएगा आप, आपके समीप, आप तीसरे माले पे हैं अध्यात्म विद्या भवन के, तो तीसरे माले में इस सत्संग हॉल में जो जो है आपके समीप में है। लेकिन और भी निकट कौन माना जाएगा? आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं उसी कुर्सी के पास में जो बैठा है वो आपके अत्यंत समीप में है। ऐसे अविद्या काम कर्म रह रहे हैं बुद्धि में, और उसी बुद्धि में जो रहेगा उसे कहा जाएगा इनके समीप। वो हो जाएगा बुद्धिस्थ जो जो भी है वो अविद्या काम कर्म के समीप है। उपशब्द का अर्थ निकलेगा उपनिषद में, समीप में। और नी का अर्थ है निश्चित रूप से, और सद का अर्थ है नष्ट करने वाला। तो समीप में रह करके अविद्या काम कर्म को निश्चित रूप से जो समाप्त कर दे, नष्ट कर दे, उसका नाम है उपनिषद। वो कौन है? संसार के कारण तो ये तीनों हैं, अविद्या काम कर्म, संसार है जन्मना मरना। ये जन्म मरण होता किसका है? जिसके बुद्धि में ये तीनों रहेंगे तो उसका निश्चित रूप से जन्म और मरण होगा ही होगा। और ये जन्म मरण के हेतु अविद्या काम कर्म जिसके समाप्त हो गए, उसका फिर एक बार शरीर छूटेगा, दूसरे बार जन्म नहीं होगा, वो मुक्त हो जाएगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ब्रह्म भाव, मोक्ष का अर्थ है ब्रह्म भाव की प्राप्ति। तो अविद्या काम कर्म को समाप्त कर दिया ब्रह्म विद्या ने, तो विशरण शब्द का अर्थ निकला। वो कौन करती है? ब्रह्म विद्या। और ब्रह्म विद्या शब्द का अर्थ है, ब्रह्म विद्या तो गीता को भी कहा गया है। गीता के अध्याय के अंत में जो पुष्पिका आती है ना, इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यासु, तो ब्रह्म विद्या ये गीता का एक विशेषण है। और लेकिन वो बुद्धि में है क्या? और उपनिषद इसको भी कहते हैं, इन ग्रंथों को भी। लेकिन ब्रह्म विद्या तो एक वृत्ति है, नहीं तो गीता मान लो याद कर दी किसी ने तो उसके मन में है, तभी तो मुख से बोलेगा। उपनिषदें याद कर दी, उपनिषदों का पाठ कर रहा है, मंत्र बोल रहा है, तो वो तो बोलेगा तो मन में रहेगा तब न बोलेगा, तो ये मन में है। लेकिन उनके भी दो रूप हैं, एक तो ग्रंथ रूप, शब्द रूप, तो शब्दात्मिका नहीं है वो, उन शब्दों का जो अर्थ है, उस अर्थाकार जो वृत्ति है। तो उपनिषदों का अर्थ, भगवद गीता का अर्थ, ब्रह्म सूत्र का अर्थ क्या है? ब्रह्मात्म एकत्व, वेदांत का विषय जो होता है, माना जाता है उसे, उसका अर्थ। तो उपनिषदों का अर्थ, ब्रह्म गीता का अर्थ ब्रह्मात्म एकत्व है, यानी अहम ब्रह्मास्मि है। तो चित्त में जैसे मैं गिरीश भाई ड्रेस वाला हूं, इसको याद रखना पड़ता है क्या आपको? बिना याद किए ही ये आता है, ये कार्यक्रम संघात इस नाम वाला, इतना सुस्पष्ट अहम वृत्ति उठते ही ये आ जाए कि मैं ब्रह्म हूं, चिदानंद रूप शिवो अहम शिवो अहम। तो ये जो अहम वृत्ति है ना, ब्रह्म को आपके वास्तविक स्वरूप को आलंबन करते हुए सहज बनने वाली, अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार, इसका नाम है वस्तुतः उपनिषद, उसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। ये ब्रह्म विद्या है और यह वृत्ति ही अविद्या काम और कर्म जो जन्म मृत्यु के कारण है इन्हें समाप्त करती है। यह वृत्ति जिसके बुद्धि में उत्पन्न, और यह वृत्ति बुद्धि वृत्ति है, और वो उत्पन्न होती है तत्वमशादी वाक्यों से, और तत्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि यह वृत्ति बुद्धिस्थ अविद्या काम कर्म को समाप्त करती है। उत्पन्न होती है बुद्धि में ही, और बुद्धि को, बुद्धिस्थ इन तीनों को समाप्त करती है। जहां सूर्योदय होता है वहां रात्रिकालीन अंधकार तथा तज्जन्य भय समाप्त होता है। जहां प्रकाश होता है तो अपने उदय के साथ साथ समाप्त करता है। तो ये प्रकाश के तरह अहम ब्रह्मास्मि यह वृत्ति उपनिषद शब्द का अर्थ भूता बुद्धिस्थ अविद्यारूप अंधकार और उसका कार्य कामना और कर्म को समाप्त करती है, नष्ट कर देती है। इसलिए उसे कहा जाता है विशरण करने वाली होने से अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति को उपनिषद। और गति का अर्थ होता है प्राप्ति, तो अर्थ निकलेगा समीप में रह करके जो आपको निश्चित रूप से प्राप्त करा दे। क्या प्राप्त करा दे? जो आपका खोया है उसे वो प्राप्त करा दे। कुछ खोया है आपका? क्या खोया है? स्वरूप खोया है। और कब से खोया है? अनादिकाल से खोया है। तो जो अनादिकाल से हमारा खोया हुआ स्वरूप है वह हमें हमारे पास में आकर के उपलब्ध करा दे, उसे कहा जाता है उपनिषद। वो गति अर्थ को लेकर के, तो वो जैसे ही अविद्या काम कर्म की निवृत्ति कराती है अहम ब्रह्मास्मि ये वृत्ति, तो आपको फिर ये शरीर रहने पर भी शरीर मय के रूप में प्रतीत न होकर के प्रतीत होगा ब्रह्म ही मय के रूप में। जो ब्रह्मास्मि चिंतन माला के अंत में चौथे पाद में बार बार प्रातस्मरणीय प्रेमपुरी जी महाराज जो कहते हैं ना कि ब्रह्मास्मि, वो वही आपकी वृत्ति बनेगी हमेशा। फिर तो वह आपका खोया हुआ स्वरूप आपको उपलब्ध करा रही है, आपके बुद्धि में प्रकट होकर के अहम ब्रह्मास्मि यह वृत्ति। इसलिए भी इसे उपनिषद कहा जाता है। ये उपनिषद है कि जो आपके समीप में रह करके निश्चित रूप से आपके खोए हुए ब्रह्म भाव को उपलब्ध करा दे, प्राप्त करा दे, वह उपनिषद। और अवसादन, अवसादन कहा जाता है शिथिल करने को। तो जो